ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அப்பன் தசைவ பூர்வான் தசச்சா பராஞ்ச அப்பனே ஜாந்தி குடும்பமே பூர்வமே தஸ் ஆகவே தஸ் பீடி किंतु अथ आत्मन एकमी सत अपने पिता प्रपिता मह देखे तो 21 पीढ़ी आगे 21 पीछे पीछे पूर्व 21 से आगे भी 21 पीढ़ी तक दशैव पूर्वान् दशचा परांश्च ज्ञातिन तथा आत्मन तथेकमी सत एकमी सत अरण्यवासी सकृतं दधाति विमुच्यारण्ये सशरीर धातुन ऐसे जो अरण्यवासी संन्यास होता है सब छोड़कर के साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है और यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो गृह में घर में रह करे कहीं भी हो और अन्यवास में कभी आग्रह नहीं है मेमचारण्य सशरीर धातु जब ऐसा शरीर छोड़ देता है ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो इतने रक्षा करता है। और ऐसे ही कहा गया कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ कुल पवित्र हो जाता है और माता भी कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन वसुंधरा पृथ्वी जहां जन्म लेता है पृथ्वी पुण्य पति हो जाती है। ये ज्ञानी जहां जन्म लेते हैं जहां रहते हैं उसके द्वारा अपार संवित सुख सागर स्मिन लीनम परे ब्रह्मणी चित्त पर ब्रह्म में जिसका चित्त लीन हो जाए अपार संवित सुख संवित रूप अपार सुख सागर में लीन हो जाता है ज्ञानी तो सबके उद्धार करता है। ऐसे बहुत है श्लोक कथन है। तो ये उपासना करने से लाभ होता है उसके कुले में भी सत्कर्म करने वाले सन्मार्ग में चलने होता है। ये भी एक बड़ा अच्छा है फल उपासना भक्ति का फल उसके कुले में होने वाले सन्मार्ग में चले अर्थात ये भी देखना चाहिए गृहस्थ को अपने कुले में होने वाले पुत्र पुत्र आदि सन्मार्ग में चले उनको चलाना ही अपना कर्तव्य। यदि वो नहीं चलते तो पितृलोक बड़े दुखी होते हैं रुदंती पिता रहा करके पितृलोक को ऊपर रहकर रुदन करते कहां कष्ट गति को प्राप्त किया उनको कष्ट होता है। ये सन्मार्ग में चलते तो उनको लाभ होता है भक्ति करेंगे वेदांत श्रवण करेंगे उन करने से उनको लाभ होता है पिंडदान से तो लाभ होता है। सन्मार्ग में चलने पर कुल का उद्धार करते हैं गया में पिंडदान कोई करता है तो उनके कितने पीड़ित को लाभ होता है बड़े खुश होते हैं। इसे यदि कोई कुत्सित मार्ग में नीचे मार्ग में चला गया विरुद्ध कर्म करने लगा पितृलोक रोते हैं तो सबका कल्याण करता है। तो इसलिए गृहस्थ का ही कर्तव्य है उसको पुत्र पौत्रों के भी उसमें लगाए जैसे उपासना करता है उसके वो भी ऐसे ब्रह्मवर्चस्व कुल में होते सदाचारी होते हैं। किन्तु प्राणस्तु ऐसा आत्मनित होना चाहिए जिसकी वायु की तुम उपासना करते हो ये तो वैश्वानर आत्मा का प्राण है सारे स्थूल प्रपंच अभिमानी है वैश्वानर विराट उसका वायु होता है उसका प्राण तो पूरा वैश्वानर के प्राण को तुम वैश्वानर मान के उपासना करते हो वायु को प्राण वायु को एक देश में तुम समस्त बुद्धि करके उपासना करते तो उपासना का तो फल हुआ किंतु एक देश में समस्त बुद्धि कर उपासना करने से उसके जो त्रुटि है उसके कारण उदक्रमिष्य प्राणस्त उदक्रमिष्यत तुम्हारे प्राण का उत्क्रमण हो जाता यन्मांग नागमिष्य मेरे पास नहीं आता तो अर्थात यथार्थ बहुत साधु तुमने अच्छा किया मेरे पास आया अभिमान छोड़ करके। अथ होवाच जनं शार्कराक्ष कौन्तम आत्मानम उपास्य आकाशमेव भगवो राजनीति होवाच एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानमुपासे तस्मात् त्वम् बहुलोऽसि प्रजया धनेन च जन्म शार्कराख्य शर्कराख्य के पुत्र जन है उनसे पूछा कौन त्वम् आत्मानमुपास किस आत्मा की उपासना करते हो उत्तर देते हैं हे भगव हे राजान आकाश में भी मैं आकाश की उपासना करता हूं आकाश रूप वैश्वानर ये सब बहुल आत्मा कहते बहुल आत्मा है वैश्वानर बहुल आकाश को क्यों सर्वगत है सव्यापक है बहुल व्यापक रूप आत्मा यम तम आत्मानु उपासे जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इसलिए तस्मात तुम बहुल होसी तुम बहुत हो संपूर्ण हो किससे संपूर्ण है प्रजया धने न प्रजा है पुत्र पुत्र आदि प्रजा, और धन है हिरण्य आदि सब धन से भी पूर्ण हो। अत्यन्नम पश्यसि प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवत्यस्य ब्रह्मवृच संकुले ये एतम एवं आत्मानु वैश्वानरमुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मनीतो वाच संदेहस्ते व्यसीर्य यन्मान्नागमिष्यति अत्यन्नम पश्यसि प्रियम। ये सब पर्यामी समान है, तुम दीप्ताग्नि हो, अस्य अन्न का तो अन्न खाते हो, अन्न तो सब खाते हैं, उसके खाना होता है जो खाकर पचा लेता है, पर्याप्त खाता है तो पचा लेता है, सर्वपुष्ट होता है, तुम इसे दीप्ताग्नि हो। पश्यसि प्रियम, प्रिय है तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि प्रिय जो सन्मार्गगामी उनको देखते हो, और जो इसे उपासना करता है उसको भी इसे फल मिलता है, वो भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम, दीप्ताग्नि होता है, प्रिय पुत्र पुत्र आदि को देखता है। भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसम कुले, अस्य कुले ब्रह्मवर्चसम, इसके कुले में ब्रह्मवर्चस्य तेज पुत्र पुत्र आदि में होता है, क्योंकि सदाचारी भीत कर्म करने से ये स्वाध्याय करते वेद आदि तन निमित्त तेज प्राप्त करते हैं। यह एतम एवं आत्मानु वैश्वानर उपास्ते, इसे वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है, किन्तु ये वैश्वानर आत्मा संपूर्ण नहीं है, संदेहस्तु ऐसे आत्मा न, ये संदेह हो गया शरीर मध्यम, शीर हाथ पैर अलग करते मध्यम भाग उसको करते संदेह, बहुल स्थान मध्यम शरीर, ये तो वैश्वानर का देहर है, संदेह आत्मा न, वैश्वानर आत्मा पूरा नहीं जानते हो, एक देश में वैश्वानर बुद्धि करके उपासना करते हो तो इसी के कारण तुमको फल तो मिल जाता है, किंतु जो एक देश में समस्त बुद्धि करते हो तो तू यदि मेरे पास नहीं आता, संदेहस्ते व्यसीरियत, तुम्हारा देह विचिन्न हो जाता, नष्ट हो जाता यदि मेरे पास नहीं आता। अथ होवाच बुडिलम आश्वतराश्विम व्याघ्रपद्य कं तमात्मानुपासितप एव भगवो राजनीतोवाचेश वै रईरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानुपासे तस्मात् त्वं रईमान पुष्टिमानसि। बुडिल नामे अश्वतराशि को कहते व्याघ्रपद, हे व्याघ्रपद संबोधन, कम आत्मानं त्वमुपासे, किस आत्मा की उपासना करते हो, इति पूछने पर एक अप एव भगो राजन, अप जल रूप जल की, क्या ये सभी रई आत्मा, ये रई है, रई है वैश्वानर धन रूपे, जल से आप है जल, जल से वृष्टि होने पर अन्न होता है, अन्न होने पर धन होता है, इसे रई शब्द से धन कहा, वैश्वानर ये रई है, इस रई आत्मा वैश्वानर रई धन रूप आत्मा है। यम तम आत्मानुपास, जिसकी उपासना करते हो, इसी उपासना का फल भी तुमको प्राप्त होता है, यद्यपि एक देश उपासना तो भी उसका फल प्राप्त होता है, तम रईमान पुष्टिमान, सी रईमान है धनवान है, और पुष्टिमान है शरीर से पुष्ट हो, अन्न आदि भोजन करने से दीप्ताग्नि होने से शरीर से पुष्ट हो, निरोग पुष्ट होता है, जो भोजन करता है दीप्ताग्नि होता है तो धन शरीर से पुष्ट होता है, निरोग होता है, स्वस्थ होता है, निरोग स्वस्थ होने पर वो साधन भजन कर्म कर सकता है, उपासना कर सकता है, इसलिए पुण्य कर्म का फल स्वस्थ होना। अस्यन्नम पश्यसि प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवत्यस्य ब्रह्मवर्च संकुले ये एतम एवं आत्मानु वैश्वानरमुपास्ते वस्तित्वेष आत्मनेति होवाच वस्तिते व्यभेत्स्यन् यन्मां नागमिष्यति। इसी प्रकार अस्यन्नम पश्यसि प्रियम, तुम मन दीप्ताग्नि है प्रिय देखते हो, जो इस प्रकार उपासना करेगा वो भी दीप्ताग्नि होता है, अत्यन्नम पश्यति प्रियम पुत्र पुत्र आदि प्रिय देखेगा, जो सन्मार्गगामी भवत्यस्य ब्रह्मवृचसं कुले, अस्य कुले ब्रह्मवृचसं तेज श्रोता है वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज, वृत्ते सदाचार स्वाध्याय वेदादि अध्ययन तन्निमित्त के सत्वगुण अधिगम से तेज होता है, तुम्हारे कुले में पुत्र पुत्र आदि में ये तेज होता है, जो सात्विक गुण सन्मार्गगामी उनमें विलक्षण तेज प्रतिभा और आत्मबल इतना अधिक होता है, सुखी होते आगे भी सुख प्राप्त करेंगे, अभी भी सुखी होते हैं। ये एतम एवं आत्मानु वैश्वानर उपासते, जो इसे आत्मा वैश्वानर की उपासना करता है, किंतु जिसकी तुम उपासना करता है जल रूप वैश्वानर बस्ती तो ऐसा आत्मा न, ये तो बस्ती है, मूत्र संग्रह जहां मूत्र रहता है बस्ती है, ऐसा आत्मन इति होवाच वस्तिते व्यभस्य यन नाम नागमिष्य। यदि मेरे पास नहीं आता तो जो व्यक्ति मूत्र स्थान संग्रह होता है जहाँ रहता है वो नष्ट हो जा फट जाता यदि मेरे पास नहीं आता। अथ होवाच उद्दालकम आरुणी गौतम कं तम आत्मानुपासयति पृथ्वीमेव भगवो राजन्निति होवाच एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानुपासे तस्मात् त्वम् प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च। ये आरुणि उद्दालक जिनके पास ये पांच गए थे उनके पास गए थे तो वो फिर स्वयं देखा कि ये लोग बड़े बड़े विद्वान है महाग्रस्त महाश्रुत्य आए मुझे पूछेंगे मैं सब नहीं बता पाऊंगा इनको अन्य आचार्य के पास भेजूंगा कह करके स्वयं भी उनके साथ मिलकर आए अश्वपति कह के क्षत्रिय राजा के पास ब्राह्मण होते हुए भी तो उनसे अंत में पूछते उदाल कारणी के गौतम कौन तुम आत्मानुपास किस आत्मा की उपासना करते हो। एक हे भगव हे राजन पृथ्वी में वो पृथ्वी की उपासना करता हूँ यही वैश्वानर वैश्वानर है समष्टि स्थूल सर्व अभिमानी पूरा स्थूल प्रपंच मिला करके तो उसकी पृथ्वी में वैश्वानर बुद्धि कर उपासना करते हैं। ये सब प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वानर ये प्रतिष्ठा रूप आत्मा इसमें सारे कुछ प्रतिष्ठित है पृथ्वी में प्रतिष्ठा रूप आत्मा वैश्वानर जिसकी तुम उपासना करते हो तस्मा तुम प्रतिष्ठित हो इसलिए तुम प्रतिष्ठित हो। किससे प्रतिष्ठित है प्रजया पशुभिश्च प्रजा पशु युक्त होकर प्रतिष्ठित हो। अत्यन्नम पश्यति प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवत्यस्य ब्रह्मवर्च संकुले एतमेवम आत्मानं वैश्वानरं उपास्ते पादो त्वेतावात्मनिति होवाच पादो त्वे व्यम्लास्येतां यन्मनागमिष्यति। इसी प्रकार अस्यन्नम पश्यति पिशि प्रियम दीप्ताग्नि हो प्रिय पुत्र पुत्रादि तुम देखते हो जो इस प्रकार उपासना करता वो भी दीप्ताग्नि होता है। अत्यन्नम पश्यति प्रियम प्रिय पुत्र पुत्रादि देखता है जो सन्मार्ग में चलने वाले अस्य कुले ब्रह्मवर्चसम कुल में पुत्र पुत्रादि में ब्रह्मवर्चस तेज वृत्त स्वाध्यानिमित्त तेज होता है। एतम एवं आत्मानं वैश्वानरं वस्ते बार बार ये जो फल कथन करते हैं यही सत्कर्म का उपासना का फल है। दीप्ताग्नि होता है पुत्र पुत्र आदि सन्मार्गामी होते हैं जो ब्रह्मवच से तेज होता है वो भी पुण्य कर्म का फल अपने में केवल नहीं पुत्र पुत्र आदि में भी ये उपासना कर्म का फल है। वैश्वानर आत्मा की उपासना करता उसके कुले में इच्छा होता है किन्तु पादो तो ये तो आत्मन ये तो वैश्वानर का पाद है जिसकी तुम वैश्वानर बुद्धि से उपासना करते हो। उपासना का फल तो कुछ तो मिलता है किंतु एक देश में जो संपूर्ण वैश्वानर बुद्धि कर उपासना करते हो इसमें यदि अभिमान कर बैठ जाता मेरे पास नहीं आता तो पादो ते व्यमला शीतान पाद शिथिल हो जाता शिथिल होने से चलना फिरना कठिन होता है चलने पर शिथिल हो जाता नष्ट होता शीतल हो जाता ढीला ढीला हो जाता ग्रंथि आदि में रहता है शक्ति रहती वो शक्ति के बिना चलना बैठना बड़ा मुश्किल होता है। ये हो जाता है यदि न आगमी से यदि नहीं आता ये सर्वत्र छह को इसे कहा एक देश उपासना से करते हैं एक देश से उपासना का फल भी होता है जो उपासना करता है उसको भी फल मिलेगा किन्तु प्रत्येक एक देश में समस्त दृष्टि करके उपासना करने से दोष भी कहा। इसी अभिप्राय से वैश्वानर को संपूर्ण को समझ करके उपासना करे अधिक फल मिलेगा। एक देश में फल का व्यर्थ नहीं है उसमें दोष भी बताया इसी अभिप्राय से समस्त वैश्वानर को समझ करके उपासना करे उपास्य के स्वरूप को ठीक जान करके उपासना करे तब उपासना अच्छी होती है। उपास्य स्वरूप को ठीक नहीं जानकर जो उपासना है उसकी अपेक्षा उपास्य स्वरूप को ठीक जानना इसीलिए वेदांत श्रवण करने पर जो उपास्य शुद्ध परमात्मा है उनके स्वरूप को समझे। परमात्मा का अलग रूप है अलग अवतार है अलग रूप धारण करते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा परमात्मा की जिज्ञासा के लिए सूत्र व्यास जी ने बनाया वो ब्रह्म क्या है जन्माद्यत उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिनसे वो ब्रह्म है किन्तु यहाँ तो उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा है स्थिति करने वाले विष्णु है प्रलय करने वाले शिव है यहां से झगड़ा शुरू हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसकी उपासना करेंगे ब्रह्मा की उपासना बहुत लोग नहीं करते, ब्रह्मा को साप दिया था शिव जी ने, किन्तु विष्णु शिव में उनमें तो झगड़ा नहीं, भक्त में झगड़ा है। किसकी उपासना, कोई भक्त अच्छे भक्त मुमुक्ष वो भी कभी शिव का भक्त होता है तो कभी विष्णु का भक्त होता है, कभी राम की महिमा सुना तो राम नाम जपने लगा, कभी कृष्ण की सुना तो कृष्ण का, कभी विष्णु नारायण उनका भी। एक ही तो है किन्तु अलग अलग है, अवतार भी अलग अलग है। कोई हयग्रीव के उपासक होते हैं, कोई नृसिंह भवानी के उपासक होते हैं, कोई राम के, कोई कृष्ण के, अलग अलग सभी है। तो अभी इसमें जो रहता है वो बड़ा कठिन होता है। किसका हुआ जब समझ ले मैं ये पंचदश में इसका विचार करके उपासना करने वाले ए, अलग अलग देवता, कोई कृष्ण के राम के तो प्रसिद्ध है, कार्तिकेय की उपासना दक्षिण में बहुत होते हैं, गणेश के उपासक तो है यहाँ सब मालूम है, कार्तिकेय भवानी के उपासक बहुत है, कार्तिकेय के बड़े बड़े मंदिर दक्षिण में है, बड़े बहुत बहुत बड़े बड़े कार्तिकेय बड़े बड़ा बहुत उपासक वहां उनमें देखा है। कभी कभी किसके कार्तिकेय भगवान प्रकट होते करे कहते हैं, कोई आकर के आते ऐसे ऐसे करे फिर गिर जाता है, उसे उठाते हैं, बड़े बहुत कुछ करते हैं बड़े भक्त कार्तिकेय के बारे। और इसी प्रकार सब यहाँ चिंतन करते करते अंत में पंचदश में कहा वांस के वृक्ष का ही कुल देवता है, कुल देवता है, पशु पक्षी अलग अलग है, कोई बांस होता है ना वांस के वृक्ष उसको भी कोई, और कितने स्थान में इसे देखा है लोगों गांव देवता, ग्राम देवता कोई पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ कोई पत्थर फत्थर रखे वहां पूजा करते हैं, कोई सर्प देवता कहते हैं, सब लोग जाकर पूजा करते हैं, वहां देखने पर पता नहीं चलता किसी की पूजा करते हैं, कुछ कुछ रखे गए कहीं सिंदूर आदि लगा हुआ, कौन देवता कहाँ है क्या है, कहीं रखे कहीं नहीं कुछ है, किन्तु कोई पेड़ है, कोई बटल अश्वत्थ आदि तो पेड़ होता है, कहीं कुछ ऐसे कुछ रखा पूजा करते हैं, किन्तु कभी कभी वो देवता को प्रकट करते हैं, ऐसे भी सामर्थ्य ही देखा गया देवता। ऐसे हुआ था कभी बहुत कितने साल पहले, अभी तो वर्षा में नष्ट हो गया था, उसके पहले एक बार बहुत रास्ता नष्ट हो गया गंगोत्री पानी आने पर, रास्ता बनाने के लिए सब जब जाते हैं किसी गांव के पास, वहां सर्प आ गया, दो चार पांच सर्प आए, फिर कहे सर्प डर के काम करने वाले, जब दूसरे दिन जाते थे कि सर्प है, फिर वो कहना ये तो देखेंगे नाग देवता वहां आए, ये नाग देवता सर्प बेहता है, हम नहीं जाएंगे, तो उनको बड़े ऑफिसर लोग बताए उधर से आओ, तो उधर से काम के जाए उधर भी सर्प देखे, तो कर्मचारी लोग जो काम करने वाले तो दूर बैठे, मजदूरी जितने देने पर क्या होगा, हम मरेंगे हम उधर जाएंगे, वो तो कहे हम नहीं जाएंगे, सब पूछे क्या करेंगे, कहीं उनके गांव वाले लोगों को पूछो उनका जो उपासक वो देवी से पूछेंगे देवता से पूछेंगे वो जो कहेंगे उनको करना होगा। तो फिर उनको पूछा गया देवताओं ने में आती है कौन आती कैसे आती है भगवान जाने, वो देवता आती है या कोई सिद्ध पहले, कोई कोई कहते जो पहले उपासना करते थे वो आते, कोई कहते वो देवता आती है, कोई असंभव ने आने के बाद वो कहती है यहां रास्ता नहीं ले सकते हो, रास्ता लेने के इतने दूर में ले सकते हो तभी यदि यहां मेरे लिए मंदिर बनाना है, मेरे लिए यहां मंदिर बनाओ तो इतने दूर में ले सकते हो, नहीं तो इतने दूर भी नहीं ले सकते हो, तो बताए यहां लेने के लिए बताओ मंदिर कहां बना देंगे, क्या मंदिर तो ही बनेगा और यहां से इतने दूर के पहले यहां नहीं ले सकते हो, मंदिर यहां बनेगा इतने दूर तक कुछ नहीं करना, उसके आगे रास्ता बना सकते हो पहले मंदिर बनाओ, तो ऐसे ही हुआ वहां मंदिर बनाए फिर इतने दूर में रास्ता को थोड़ा टेढ़ा करके ले आ गया। अभी भी कहीं कहीं होता है तो बुलाते, मैं अभी देखा लोग दो व्यक्ति है कोई कुछ देवता कर रखते हैं बड़े से रखते हैं वो इसे इसे हिलते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है तो दोनों जोर से उनको इधर जाना पड़ता है, कभी इधर कभी हिलना पड़ता है, ऐसा बड़े मोटा रखे उसके और बीच में लटका हिलता है, और कभी ऐसा तो कास्टे भी हिलता है, और देखे कि वो कास्टे ऐसे करता है तो कभी ऐसे दोनों घूमते हैं ये कहां जाते हैं कहां जाते हैं, और पूछने पर कुछ कहते हैं ऐसे करते हैं, ये जो देवता को लेकर जाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, तो उपासना करते हैं देवी को प्रकट करते हैं उसके अनुसार चलते हैं फल प्राप्त करते हैं विश्वास करते हैं सब होता है। तो अभी ये उपास्य कौन है किसकी उपासना ऐसे करके तो उपासना तो करते ही है सब कुछ फल प्राप्त करते हैं, जब मुमुक्षु चिंतन करना चाहता है तो कौन परमात्मा है क्या है किसकी उपासना करे कौन श्रेष्ठ है मन में इसी हो जाता संशय संशय उनसे कभी किसकी उपासना करता है कभी दूसरे कोई कहते हैं उनके उपासना करता है किस नाम कोई चिंतन करता है कोई कहता है इस नाम की अपेक्षा इस नाम में अधिक महात्म्य कोई कहता है इस नाम में अधिक नाम और शास्त्र में सारे पुराने में व्यास जी भी जिस पुराण में पढ़ो उसी पुराण में जो उनको बड़ा कहेंगे उनका नाम बड़ा है और वो सबसे बड़ा है, उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। देवी पुराण देवी भाव तो पढ़ो, देवी सबसे श्रेष्ठ है, देवी तो विष्णु को भी उपदेश करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनसे नीचे है, और शिव पुराण तो शिव बड़ा है, तो इसे सब में बड़ा बड़ा है। तो क्या है वास्तव स्वरूप जो समझे अंत में आया, मायांतु प्रकृति विद्यान मायिनंतु महेश्वरम, माया है प्रकृति, जो माया का अधिपति है ईश्वर, वो माया का अधिपति फिर कौन है, शिव है या विष्णु है, उनका नाम नहीं लेना, माया के अधिपति जो है वो ईश्वर है, और वही ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले वही ईश्वर है के माया विचित्र चेतन ईश्वर है, और वही कभी किस रूप धारण करते हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही एक ईश्वर, वही सृष्टिकर्ता, वही पालनकर्ता, वही सहार करने वाले, और वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कभी किस रूप धारण करे कुछ करते, वो पुराण में बहुत प्रकार है, लीला श्रवण करो कुछ करो, अंत में एक ही ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों करने वाला, और सारे पुराण में देखो अंत में लेकर के वही उनको कहेंगे सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले जो एक है वही परमेश्वर है, और माया विचित्र है। अंत में फिर उनके स्वरूप जो चिंतन करते स्तोत्र कहीं है स्तुति करते हैं, कहीं आकर देवता लोग स्तुति करने के, ब्रह्मा जी का स्तुति करेंगे, जहां स्तोत्र में सारे पुराण में देखो जिनको सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कह करके सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर मान कहते हैं, उनको फिर कहते हैं आया आप अद्वितीय है, आप सर्वव्यापक है, घट घटवासी कहेंगे, अंत में क्या कहेंगे आप त्रिगुणातीत है, माया से अतीत है, आप तुर्य है, आपसे भिन्न कोई नहीं है, अंत में शुद्ध निर्विशेष चेतन ईश्वर उसको वहां तक पहुंचाएंगे निर्विशेष ब्रह्म। तो वास्तव स्वरूप को जानने पर उनकी जैसे भक्ति उपासना होती है, नहीं जानकर करने पर इतने नहीं होती है, जैसे स्वरूप वेदांत श्रवण करने के बाद ज्ञान नहीं हो किन्तु ये समझ ले माया विचित्र चेतन ईश्वर वही ईश्वर एक है, वो अनेक रूप धारण करते, इसमें आया 33 करोड़ देवता अलग हो गया, 3306 बताया, वो 33 बताया, वही 6 है, वही 3 है, 2 है, ऐसा करके एक है हिरण्य गर्भ, एक ही हिरण्य गर्भ समष्टि देवता है, उनके अवयव सारे देवता है, ऐसा उनसे विलक्षण है, हिरण्य गर्भ से विलक्षण है अंतर्यामी, जो काल आया था आकाश आकाश सो आकाश में प्रतिष्ठित, आकाश में प्रतिष्ठित वो आकाश कौन, अव्याकृत आकाश अंतर्यामी ईश्वर उसमें सब प्रतिष्ठित है, वो जो माया विशिष्ट चेतन वो ईश्वर ये समझ लेने से, और उनका नाम रूप अलग अलग, किस समय क्या रूप किस समय क्या नाम, अनेक रूप रूपाय अनेक नाम अनेक रूप से प्रकट होते, वास्तवत नाम रूप से विलक्षण, वहां भी कहेंगे पुराने में आता है नाम रूप से अतीत आप है, आप माया से अतीत है, आप तुर्य है, आप में ऐसे सब कुछ कहकर अंत में, तो उपास्य स्वरूप ठीक जान करके उपासना अच्छी होती है, इसलिए उपास्य स्वरूप जानने के लिए वेदांत का हो पुराणों का श्रवण करते हैं, गुरुमुख से श्रवण करते हैं, उसका तात्पर्य को समझिए। पुराण में बहुत आख्यायिका है, आख्यायिका में विभिन्न स्वरूप का कभी किस रूप का कभी किस रूप बड़ा का, फिर अंत में स्तोत्र पाठ करते तो परस्पर जो विरोध होता है इसका क्या तात्पर्य, इसके समन्वय करना पड़ता है। वही एक ही व्यास जी पुराण लिखते हैं, किस पुराने में किसको किस पुराने में किस में ऐसा क्यों कहते हैं, उसका क्या तात्पर्य, वही तात्पर्य अंत में लेना है। शुद्ध चिन्ह मात्र एक अद्वितीय निर्विशेष है, माया विचित्र होने से उनका नाम ईश्वर होता है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, और वही लीला करने के लिए अनेक रूप धारण करते, एक ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनेक रूप सारा जगत रूप धारण करते, तो अनेक रूप धारण करने में उनके लिए कोई कठिनाई नहीं, अनेक रूप, इसलिए कोई कोई कहते हैं आपके धर्म में आप तो बहुत भगवान है, भगवान तो एक ही है, वो अनेक रूप धारण करते, कोई विरोध नहीं, एक ही व्यक्ति अभी अभी नाटक कोई दिखाते हैं, एक ही व्यक्ति आकर के नाटक दिखाएगा और वो ऐसे अभ्यास करते हैं, वही व्यक्ति 5 व्यक्ति के कंठ से 5-7 व्यक्ति अभ्यास करते है, बोलते हैं, इतने सामने दिखेगा, एक उनको वेश बना देंगे, वही आकर यहां बैठ सामने खड़े होकर के राम बनकर कहेगा, और उधर चला गया दिखेगा नहीं, उधर कोई सुनेगा तो जैसे रावण बोला दूसरे कोई बोला जोर से, वही व्यक्ति बोलेगा और कंठ अलग से बोलेगा, लगे वहां कोई दूसरा बोल रहा है, अब फिर इधर आकर राम ने फिर इधर चला गया उधर कुछ बोलेगा लगा दूसरे तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, लक्ष्मण गुरु बोल रहा है, तो वही व्यक्ति कभी दिखा देता है उस टाइम ब्राह्मण थोड़ी देर में उसको जो चला गया वो लोग उसको वेश बदल करके अलग वेश बना देंगे, रावण बना दिया, मुख में कुछ लगा दिया बना दिया, इधर आ गया। अगर बोला रावण जैसे बोलता है, सब क्या सोचते हैं रावण भी है राम भी है लक्ष्मण, एक ही व्यक्ति वेश बदल दिया सामने आया और अभ्यास करता है इसे कंठ का, पांच सात व्यक्ति का कंठ आरंभ से अंत तक बोलेगा वो कंठ अलग अलग चलेगा। जब रावण बोलेगा रावण का स्वर बोलेगा सबको लगेगा कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब राम बनकर बोलेगा कोमल स्वर बोलेगा वो कंठ से, कभी कभी कोई सीता बोलती महिला वो से ऐसे कंठ से अभ्यास करते सुनने वाले को लगेगा कोई महिला बोल रही पुरुष नहीं कोई बोल रहा है, बच्चा बोलने का कंठ है तो बच्चा जैसे वैसे कंठ करके बोलते हैं, देखा है अभ्यास करते हैं तो कभी सामने बैठ करके स्वयं सुनाता है बच्चा किसे बोलता है सो बोलेगा, कैसे महिला बोलती है बोलेगा, कैसे रावण बोलता है कौन बोलेगा, वही व्यक्ति सुनाएगा, ऐसे सुनाएगा तो सुनने वाले को लगेगा बहुत, किन्तु अभ्यास करते हैं। बूढ़ा बोलता है, बूढ़ा बोलता है तो ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे करके बोलेंगे ऐसे कहेंगे तो ऐसा लगेगा कंठ कंपन कर बोलता है, अरे था पुत्र ऐसे कर बोलते कहीं तो लगेगा बूढ़ा बोल रहा है बच्चा बोल रहा है, अभ्यास करते हैं। जब ऐसे मनुष्य इस प्रकार रूप बना करके नाटक दिखा सकते हैं तो परमात्मा ऐसे अनेक रूप बनकर के नाटक नहीं कर सकते, अनेक रूप बनकर करते हैं, अरे की परमात्मा है इसको समझ करके उपासना करना चाहिए। अब ये कहते सबको अलग अलग उपासना करते हैं, सबके एक साथ उपाय उपदेश करते हैं।